نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير محسن انسانیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب آپ واقعی ایک محسن تھے آپ کی شخصیت کے بارے میں جو چیزیں آج کل ہم پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا ہے یہ جہاں اللہ کے نبی سے محبت ہے وہاں ہمارے لیے ان پڑھنے میں ایک کامیاب انسان کو فالو کرنا ہے دنیا میں لوگ کامیاب لوگوں سے پوچھتے ہیں انٹرویوز لیتے ہیں ان سے جا کر باتیں کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ سوتے کب ہیں آپ جاگتے کب ہیں پھر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ جو کر رہے ہیں یہی ٹھیک ہوگا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سچائی کی گواہیاں مسلمز اور نان مسلم سب نے دی تو وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ ہم مسلم ہیں کہ نہیں ہیں وہ اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز دا موسٹ سکسیزفل پرسن ان دس ورلڈ آج ہم آپ کی مزید باتیں پڑھیں گے پیج نمبر 117 کا تقریباً مڈل سے تھوڑا سا اوپر کا حصہ ہے شروع کرتی ہوں کسی کی ملاقات کو جاتے اب میں نے آپ نے سیکھنا ہے نا کہ نبی کامیاب تھے تو کیا کر کے تھے تو ہم نے بھی وہی کرنا ہے کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اچھا جہاں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھیں نا تو آپ اپنے سے خود کہہ لیں کیا میرا اٹھنا بیٹھنا بات چیت چلنا پھرنا آپ جیسا ہے فرق ہے تو فوراً اپنے لیے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے فٹ نوٹ لکھ لیا کریں اچھا میں نے بھی اب کوشش کرنی ہے اچھا میں نے بھی عمل کرنا ہے اور اگر میری بھی یہ عادت ہے تو الحمدللہ میں اپنے نبی کے طریقے پہ ہوں اس طرح سے باتیں خود سے کرتے ہوئے سنیں کسی کی ملاقات کو جاتے تو دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر اطلاع دیتے کیوں دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے بالکل بیچ میں نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ دروازہ کھلتے ہی اگلا سامنے آ جائے دیکھیے پہلے دور میں تو دروازے بھی نہیں ہوتے تھے بعض دفعہ پردے ہوتے تھے بعض دفعہ پردہ بھی نہیں ہوتا تھا خیموں کی طرح کے گھر تھے تو ادب کہ بالکل ایسی جگہ پہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے کسی کے گھر جا کر دروازے پہ کہ اندر سے اگلے کی نظر پڑ جائے بعض دفعہ گھر میں خاتون ہے دوپٹہ اترا ہوا ہے گھر میں انسان تھوڑے ہلکے کپڑوں میں ہو سکتا ہے تو یہ اچھا مینر ہے اس کی آپ بچوں کو بھی عادت ڈالیں خود کو بھی ڈالیں بچوں کو بھی ڈالیں اور اجازت لینے کے لیے 3 مرتبہ سلام کرتے پوچھیے خود سے کیا میں بھی اجازت لینے کے لیے 3 مرتبہ سلام کرتی ہوں دیکھیے غیر محسوس طریقے سے آج ہم مسلمانوں کا اٹھنا بیٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف ہو گئے تو آج سے پھر عمل کے لیے دوبارہ کریں اجازت لینی ہے 3 مرتبہ سلام 3 مرتبہ کیوں کرتے تھے کہ اگر 3 مرتبہ کے بعد کوئی جواب نہیں آتا تو پلٹ جاتے کیونکہ آگے ہی لکھا ہوا ہے جواب نہ ملتا تو بغیر کسی احساس تقدر کے واپس چلے جاتے مائنڈ نہیں کرتے ایون گھر والا گھر میں جواب نہیں دے رہا دیٹ مین کہ ہی ڈونٹ وانٹ کہ یو ول کم نو کیا آپ پر میں ہر وقت ہر ایک کو ملنے کے لیے تیار ہوتے کبھی بھی نہیں ہوتے اللہ نے ہمارا ایک دوسرے سے ایک عزت کا تعلق رکھا ہوا ہے تو انسان اپنے گھر میں بڑے کیجول موڈ میں ہوتا ہے تو ایسے ہی منہ اٹھا کر کسی کے گھر نہیں چل پڑنا چاہیے جب تک کہ اگلا انس نہ حاصل کر لے یہ سورت نور میں بھی باتیں پڑ چکے ہیں رات کو کسی سے ملنے جاتے تو اتنی آواز میں سلام کہتے کہ اگر وہ جاگتا ہو تو سن لے اور سو رہا ہو تو نیند میں خلل نہ آئے کتنے ٹکیٹڈ تھے یعنی اتنا اونچی نہیں کہ اٹھا کے کہو اچھا آپ سو رہے تھے اچھا آپ دوبارہ سو جائیں اچھا پہلے دور میں تو لوگ جا کر سلام کرتے تھے آج ہم کیا کرتے ہیں فون کی بیل رات 2 بجے یا 12 بجے 1 بجے فون کریں گے اچھا اب سو تو نہیں رہے تھے نہیں اب تو اٹھ گئے ہیں اب تو آپ نے ہمیں اٹھا دیا تو یہ چیز جو پہلے دور میں جا کے کرنے کی تھی اس میں اپنے لیے سائڈ پوائنٹ نوٹ کیجئے کسی کے گھر میں فون بھی نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو ایمرجنسی ہے نا ٹیکسٹ میسج کریں میری 98% کوشش ہوتی ہے کسی کو بھی میں فون کروں اول تو کرتی بہت کام ہوں لیکن پہلے میں اس کو ٹیکسٹ کرتی ہوں کین آئی کال یو کین وی ٹاک از اٹ گڈ ٹائم آر یو فری آر ناٹ بزی کیوں کہ میرے ٹیکسٹ سے اگر وہ دیکھ رہا ہے تو کر لے اور بعد پھر چند منٹ ویٹ کرے انسان کے اس کا جواب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اور صرف کبھی میں نے بہت امپورٹنٹ بات اپنے ساتھیوں سے کرنی ہوتی ہے کبھی باہر والوں سے تو موقع کم ملتا ہے تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ میرا ٹیکسٹ تو اس نے نہیں پڑھا ہوگا لیکن میرا بہت اس وقت ضروری کام ہے جو ان سے پوچھنا ہے یا کرنا ہے یا میسج دینا ہے پھر میں کیا کرتی ہوں ہلکی سی جسٹ لیٹ کلک ایک آدھی بیل کر کے بند کر دیتی ہوں میرا مقصد کیا ہوتا ہے اس وقت کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ اس بیل سے الرٹ ہو جائے اور میرا آ کے میسج پڑھ لے جو جس کا پھر وہ مجھے جواب دے تو یہ جو گھنٹیوں پہ گھنٹیاں اور اللہ رحم کرے جو ہمارے اپنے ملکوں میں جو ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجتی ہیں نماز پوری کر لیں ٹیلی فون نہیں بند ہوتا یہ درست طریقہ کار نہیں ہے بدن یا لباس سے کوئی شخص تنکا یا مٹی وغیرہ ہٹاتا تو شکریہ ادا کرتے ہوئے فرماتے مسح اللہ ان کا ما تکرہو کیا مطلب مسح اللہ دور کرے اللہ ان کا آپ سے ماں وہ چیز تک رہو جو آپ ناپسند کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے ہر اس چیز کو دور کرے جو تمہیں بری لگے. کتنا خوبصورت ہے وہ انسان جو آپ کو ہر بات میں دعا دے. یہ چیز میں نے آج کے دور میں بہت مس کی ہے. ہم تھینک یو کہیں گے، او تھینک یو، تھوزن تھک، ہزاروں شکریہ. اب نارویجن والے تو سمجھ جائیں گے، باہر والے کہیں گے یہ مجھے کیا ہو گیا، تو تھوزن تھک ہے ہزار دفعہ شکریہ. ایسے ہی ہے نا، آپ کیا کریں، دعا دیں. یقین کریں کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں تو آپ کو ایک فائدہ تو ضرور ہوگا. دن میں کم از کم 10 دفعہ آپ کو بارک اللہ تو ملے گی، الحمدللہ کا ملے گا، جزاک اللہ خیر تو ملے گا. اچھا بعض کو آپ کہتے ہیں جزاک اللہ خیر، کہتے ہیں نہیں 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 کوئی بات نہیں. کیوں بھائی، آپ کو جزاک اللہ نہیں چاہیے؟ بیوقوفی کی بات ہے. آپ مجھے سارا دن جزاک اللہ کہیں، مجھے خوش ہونا چاہیے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. آپ مجھے کہیں بارک اللہ، تو میں تو آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے برکتوں کی دعائیں دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے شخصیت دیکھی ہے نا، آپ ہر دوسری بات میں بس دعا ہی دیتے تھے. اور آپ فیل کریں گے جب آپ کو عادت ہوتی ہے، گھر میں بھی آپ کو اپنے ارد گرد، اپنے بچوں، شوہر اور ارد گرد والوں سے سارا دن دعا لینے اور دینے کا ہی موقع ملتا ہے، الحمدللہ. تو فرمایا کہ دعا کرتے، پھر ہدیہ قبول کرتے، جواباً ہدیہ دینے کا خیال رکھتے. اچھا جی، یہ بھی دیکھیے کہ تحادو تحابو، تحادو تحفہ دو، تحابو محبت بڑھے گی. دو لفظوں کی حدیث ہے، یہ جوامل کلم جو پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. اچھا، تو صرف تحفہ لینے سے محبت بڑھتی ہے؟ کیا آپ مجھے دیتے ہی رہیں تو میں آپ کو نہ دوں، محبت نہیں بڑھے گی. تحادو تحابو میں میوچیلٹی ہے، باہمی، جیسے معاشرہ، مقابلہ، مناظرہ، باب افعال میں دو کا انٹریکشن ہوتا ہے. تو تحفہ اگر کوئی آپ کو دیتا ہے تو قبول کر لیں، لیکن پھر جواب میں اس کو بھی دیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو رسم نہ بنا لیں کہ ہم نے تو اتنا دیا تھا تو یہ اتنا دے گئے، اور اس دور میں تو ڈالر اتنے کا تھا، آج تو اتنے کا ہو گیا تو ان کو اب ہم سے بڑھانا ہے. یعنی ایکسپیکٹ نہ کریں. لا تمنن تستکثر، سورہ مدثر میں بھی آتا ہے اور سورت روم میں بھی اس کے اوپر ایک آیت ہے. لیکن اگر مطلب یہ کہ تحفے کا قیمت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک پلیئر کے لیے، ایک اچھی فیلنگ کنوے کرنے کے لیے تحفہ دینا اور لینا چاہیے. ون سائڈڈ تحفے کو رسم کہتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. اور جس میں ایکسپیکٹیشن لگ جائیں کہ لڑکے کی ماں ہے تو اس کو کڑے تو ڈلیں گے ہی ڈلیں گے، لڑکی کی ماں کو تو کوئی نہیں ڈلتے، تو یہ تحفہ نہیں ہے. یہ محبت نہیں بڑھاتا، یہ نفرت نہیں بڑھاتا ہے، بعد میں باتیں ہی ہوتی ہیں. تو ایسے تحفے نہ لیں نہ دیں جس میں رسم ہو. اور یہ ہم مسلمانوں کو ہی ختم کرنا، آپ کی میری زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، شادی، بیاہ، منگنی، جے لینا دینا، یہ سنتوں کو زندہ کرنے کا آج کے دور میں بیسٹ موقع ہے. کہہ دیں میں نے بیٹے کی ماں ہونے کے ناطے ایک تنگ کا بھی نہیں لینا کسی سے. برابری پہ رکھیے، جہاں ایکسپیکٹیشن شروع ہو جائے، امید لگ گئی نا کچھ ملنا، وہ تحفہ نہیں ہوتا. کہہ لیجئے کہ تحفے میں ان ایکسپیکٹڈ فیلنگ آتی ہیں کہ امید نہیں ہوتی مل گیا. ایک ہوتا ہے انعام، پرائز، کچھ کیا تو ملتا ہے. تحفہ کیا ہوتا ہے، ایسی بس دل کیا آپ کو دینے کو، گئے تھے یہ اچھا لگا آپ لے لیجئے. یہ جو موقعوں سے باندھ لیتے ہیں، شادی میں گئے ہیں تحفہ ضرور دینا، اب مشکل پڑ گئی. مجھے ایک اپنی آنٹی نہیں بھولتی، بہت سال پہلے کی بات ہے، پاکستان کی، اتنی ازردہ آواز میں، آج کل خاندان میں بہت شادیاں آ رہی ہیں. میں نے کہا تھا اماں تو یہ تو خوشی کی بات ہے، نہیں بیٹا دینا بھی تو پڑتا ہے نا، اور ہیں بھی ساری قریبی، کوئی بھائی کی بیٹی ہے، کوئی بہن کی بیٹی ہے، کوئی بیٹیوں کے سسرال میں. تو اس دور میں، جبکہ یہ بات ہے آج سے 10 سال پہلے کی بات شاید ہوگی، کم از کم کہتی پھر تھوڑا بھی نہیں دے سکتے بھائی، آپ جتنا دینا دیں. نہیں پھر باقی بہنیں تو اتنا دیں گی تو میں کم کیسے دوں، یہ بھی تو مسئلہ، تم کیا دے رہی ہو؟ کیا ہمارے یہاں نہیں ساری دیورانیاں ایک جتنا دلہن کو سلامی دیتی ہیں؟ اچھا تم نے 5,000 دیے تو میں بھی اب یہی دوں گی. اب اس بیچاری کی پسلی ہے نہیں، اس کا میاں جاب کرتا ہے، اس کا کاروبار کرتا ہے، نہیں دے سکتی، پر سب نے 5,000 ہی دینا ہے. یہ غلط طریقہ ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، یہ بوجھ ہوتا ہے. محبت کے لیے تحفہ دیتے ہیں، کسی دوسرے کو کانو کان خبر نہ ہو کہ آپ نے کسی کو کیا دیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کسی شخص کو اتفاقاً کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو اسے بدلہ لینے کا حق دیتے. سنیے گا، ہمارے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی نا، جا رہے تھے کونی لگ گئی، تھوڑا سا کہیں پڑے، کچھ ہوا تو آپ کہتے مجھ سے بدلہ لے لو. کبھی عوض میں کوئی ہدیہ دے دیتے، کیونکہ میں نے آپ کا دل دکھایا، میرا پاؤں آپ کے پاؤں پہ لگ گیا. جواب میں یہ تو نہیں کہوں گی آپ اپنا پاؤں میرے پاؤں پہ رکھ لیں، کہتے تھے. بڑا پیارا واقعہ ہے، غزوہ بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیں سیدھی کرا رہے تھے تو لائنیں سیدھی کرتے تھے. ایک موقع آیا آپ کے زندگی کے آخری دور کا، تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں نے اگر کسی کا کبھی کوئی تکلیف دی ہو تو مجھے دنیا میں میرے سے بدلہ لے لو، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تم مجھ سے پوچھو. اب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ صحابہ کہیں گے نہیں نہیں اللہ کے نبی کبھی بھی نہیں، آپ نے تو ہمیں کبھی دی نہیں ہے، آپ تکلیف بھی دیں تو ہمیں اس میں بھی خوشی ہے، پیاروں کی تو تکلیف بھی اچھی لگتی ہے. لیکن ایک صحابی کھڑے ہو گئے، جی اللہ کے نبی میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے. بھائی کیا ہوا؟ वो आप जब बदर के मैदान में सफ़े सीधी करा रहे थे तो आपके हाथ में छड़ी थी, जैसे वो एक स्टिक होती है ना, तो आप यूं करवाते थे सीधे, इतना सफ़ का इहतमाम करते थे कि कोई आगे पीछे ना हो। तो कहते जब आपने यूं किया ना तो आपकी छड़ी की नोक मेरे पेट पे लगी थी, तो मैं तो बदला लूंगा। अब सहाबा देख रहे हैं ये क्या कह रहे बात, अल्लाह का बंदा कभी क्या खंगूरे मारें कुछ भी करें, वो कह रहे कहा अच्छा भी ले लो तुम मुझसे आज ही बदला, मैंने जान के तो नहीं किया लेकिन आज ही ले लो। कहा जो कहा नहीं, जब मेरे पेट पे नोक लगी थी तो मेरे जिस्म पे कपड़ा नहीं था, आप भी उतारें। अब तो सहाबा का बस नहीं चल रहा होगा कि उसको मारें, कि एक नबी के साथ, एक लीडर, एक इतने मुशफिक इंसान के साथ ऐसा करते हो। अल्लाह के नबी ने माइंड नहीं किया कि मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मुझे क्या कर, क्योंकि आखिरत की फिक्र होती है। जिसको आखिरत की फिक्र है वो दुनिया में किसी को तकलीफ नहीं देगा। याद रखिए ये जो बोलते रहते हैं, गीबतें करते हैं, बातें इधर उधर की तकलीफें देते हैं, ये हमें आखिरत भूली हुई है। वरना खैर नबी सल्लम ने कमीज़ उतार दी, जूं ही आपने कमीज़ उतारी सहाबा को उस शख्स पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो शख्स उठे जाकर आपके पेट पे बुस्सा दे दिया। कहा अल्लाह के नबी मेरी कहाँ ये शांति कि मैं आपसे बदला लूँ, मैं चाहता था कि मेरे होंठ आपके जिस्म को लग जाए और ये आग से बच जाए। ये मोहब्बत खुद सिखाती है दाएँ, ये कोई सिखाने पढ़ने पढ़ाने की बातें नहीं होती कि किस स्कूल में ये बातें सिखाते हैं, ये मैनर्स होते हैं, चलने का अंदाज, बोलने का, बात करने का अंदाज और बा अदब बा नसीब। याद रखिए, लिख लें ये बात, आप चांद पे भी पहुंच जाएं, आप दुनिया में बड़े से बड़े भी काम कर लें, लेकिन अगर आपके अंदर अदब नहीं है, अगर आप बा अदब नहीं है ना अगर आप, तो फिर आपके नसीब में एक खास हद से ज्यादा आगे आना नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको बा अदब कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते से भी बात, लोग आपके साथ भी बहुत बेतकल्लुफ हो जाते हैं। खैर उसके बाद कोई शख्स नया लिबास पहनकर सामने आता तो फरमाते हसनतन हसनतन इबिल व अखलुक। अब ये गैर मारूफ दुआ है, तो मतलब कि खूब से खूब देर तक पहनो और बसीदा करो। अच्छा हम हो तो कहते हैं लो जी नए कपड़े पहनना है, बहुत आपको शौक है अच्छे कपड़े पहनने का। आज हमने क्या कॉन्सेप्ट दिया लोगों को नेक होने का कि अच्छे कपड़े देख के तुनक जाओ, किधर से लिया है, क्यों लिया है, क्यों पहना है। अमूमन हम किसी का अच्छा कपड़ा देकर क्या करते हैं, कहाँ से आया, अच्छा जी आप क्या कहते थे। अब यहाँ वो दुआ नहीं, लेकिन मुझे वो दुआ ज्यादा अच्छी लगती है, ये मैंने कभी पढ़ी नहीं, हालांकि इस बुक में रेफरेंस मौजूद है। ये एल्बिस जदीदन एश हमीदन व मुत शहीदन, नए कपड़े पहनते रहो, तुम्हारी तारीफ होती रहे और तुम्हें शहादत की मौत आए। सच बताएं आज के दौर में हम औरतें कितने नए कपड़े पहनती हैं और कितनों को पहने देखती हैं, कितने ये दुआ देते हैं। अगर आप इस वीकेंड पे किसी शादी में गए, मेरा गुमान है शादी में करीबी लोगों में से तो 98% नए ही लोग कपड़े पहन के आते हैं, जो पुराने पहनते हैं वो कभी दूर के ही लोग हो सकते हैं। कितने एक शादी में एक दूसरे को ये एल्बिस जदीदन की दुआ देकर आते हैं, ये तो आज हमारा हाल है। इसलिए हम ठोकरों में, जिस दिन नबी की सुन्नतों को अपनाएंगे हमारी दुनिया में फिर सुनी जाएगी इंशाल्लाह। तो नियत कीजिए आज से, अभी से दुआ याद करें, इससे भी छोटी दुआ है कि तुम नए कपड़े पहनते रहो और इसको पुराना करो, यानी अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। इल्बिस जदीदन इश हमीदन मुत शहीदन, कि तुम इसको पहनो, जिसको पंजाबी में लोग कहते हैं ना तुम्हें हंडाना नसीब करे अल्लाह, पहनो और हंडाओ, ये लंबी उम्र की दुआ है। तो किसी को अच्छे कपड़े देखकर, नए कपड़े देखकर ये दुआ करने की जरूरत है, ठीक है। फिर इसके बाद बदसलूकी का बदला बुरे सलूक से ना देते बल्कि अफ़्वो दरगुजर से काम लेते, दूसरों के कसूर माफ कर देते, तो इत्तला के लिए अपना अमामा यानी पगड़ी जो थी सर का कपड़ा अलामत के तौर पर भेज देते। क्या समझ आया, किसी ने आपका दिल दुखाया होता, कोई तकलीफ दी होती तो माफ करते। चले खुद से पूछिए, मैं लोगों से दरगुजर करती, हम तो कहते हैं तुम्हें कब्र की दीवारों तक नहीं बख्शूंगी, मैं तो भूल ही नहीं सकती, मैं तो तुम्हारी मैयत नहीं देखूंगी। ये पैगंबराना अखलाक नहीं है। याद रखिएगा नबी वाला अखलाक अपनाए बगैर नबी वाली इज्जत नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी। आज हमारी नेकियों के रास्ते में जो रोड़े अटके हुए हैं ना, हमारी अपनी तबीयतों में इतनी सुस्ती और इतनी कसलमंदी है, वजह पीछे ही है। मैं आपको पूरे शौर से कह सकती हूँ ये हिस्सा जो हम पढ़ रहे हैं ना नबी सल्लम का, अगर इसको मैंने अपने लिए पढ़ लिया ना तो मैंने अपने लिए कामयाबियों के दरवाजे खोल दिए। खूबी गुण है नहीं है, इसको मानते जाइए कि सुन्नत समझ के करना है, आप देखिएगा कि आपका मुकद्दर बदल जाएगा और इंशाल्लाह आपकी अगली जिंदगी में आपकी तारीफें भी होंगी और आप एक बामकसद जिंदगी गुजार कर आएंगे। अच्छा यहाँ ये भी बात पता चली कि किसी को माफ करा, कैसे पता चला, अपनी पगड़ी भेज देते थे कि इट्स ओके मेरा दिल अब साफ है। कोई पुकारता तो ख्वा वो घर का आदमी हो या रुफका में से, यानी दोस्तों में से कोई होता, तो हमेशा लबैक यानी मैं हाजिर हूँ कहते। ये भी एक अच्छा अदब है। घर में बच्चे चीख चीख के पुकार रहे हैं, माँ जवाब ही नहीं दे रही, फोन पे लगी हुई है, बहुत ही बिजी है वो अपने साथ। इस तरह नहीं करना चाहिए। जब भी कोई पुकारे जाकर पास बात करें, जी देखिए कोई ऐसे थोड़ी पुकारता। तो लिहाजा अब इसमें एक साइड का इशू है कि अगर आपको किसी बंदे की फोन कॉल आती है, अच्छा मैनर यह है कि आप उसको रिप्लाई करें। मिस कॉल है तो उसको कॉल कर लें, मैसेज है तो उसको रिप्लाई करें। अच्छा आज के दौर में जितने गैजेट बढ़ गए ना, जितनी दुनियावी चीज़ें बढ़ती गई उतने हम बदतमीज़ हो गए। मैसेज देखा, अभी नहीं बात करनी, नाम देख कर उठाते नहीं हैं, गलत तरीका है। और दूसरी सुन्नत एक और भी तो है ना कि किसी को बेमकसद फ़ोन भी तो नहीं करते थे ना, ऐसे ही हाल पूछ, ज़रा बातें कर लें। अगर आप ये कल्चर अपना लें ना टेलीफोन कल्चर में कि किसी को फ़ोन भी करना है तो सही वक्त पे करना है, सिर्फ इमरजेंसी में करना है, बहुत मजबूरी में करना है, तो फिर इस सुन्नत पे आप भी अमल करें कि फिर आप उसका फ़ोन ज़रूर उठाएं। बाज़ लोग हम फ़ोन उठाते ही नहीं हैं, उनको तो करने को दिल ही नहीं करता, उठा नहीं रहे हैं तो बाद में कभी जवाब ही नहीं देते। कह सकते हैं कि आज के दौर का एक एटीट्यूड है, ये अच्छा नहीं होता। लेकिन सहूलत मौजूद है ना कि नंबर पता लग गया तो अब नहीं करना, लेकिन अल्लाह के नबी की सुन्नत थी कि आप अगले को रिस्पांस देते थे। अब आप सवाल करें, अच्छा कोई लेट नाइट कर दे, अच्छा कोई ऐसे वक्त पे करें, तो फिर वो वही बात आ गई ना, कंडीशनल है। अगलों को भी ये चीज़ होना चाहिए और सबको अपनों को बता दें, अपने प्यारों को, दोस्तों को, और आपकी आदत लोगों को पता लग ही जाती हैं कि बेकार वक्त पे ना करें, बेमकसद ना करें, जो बात मैसेज से हो जाती है उसको फ़ोन करके ना करें, और कोई ऐसी इमरजेंसी है तो फिर उसके ख़त्म होने के फौरन बाद आप जवाब दे दीजिए। अब आगे देखते हैं बीमारों के साथ आपका क्या मामला था। बीमारों की इयादत को इख्तमाम से जाते, सरहाने बैठकर पूछते, कैफ़त अजीदू का, तुम्हारी तबीयत कैसी है, यानी हाउ डू यू फील, कैसा महसूस कर रहे हो। बीमार की पेशानी और नब्ज़ पर हाथ रखते, कभी सीने और पेट पर दस्ते शफकत फेरते, और कभी चेहरे पर खाने को पूछते, कभी चेहरे पर हाथ फेरते, खाने को पूछते। बीमार किसी चीज़ की ख्वाहिश करता तो अगर मुजिर ना होती, यानी ज़रर ना होता उसके खाने से, तकलीफ ना होती, तो मंगवा देते, तसल्ली देते और फरमाते, ला बासा इंशा अल्लाहु तुहूरा। इसका और भी लफ्ज है, ला बासा तुहूर उन इंशाल्लाह, तुहूर का लफ्ज पहले भी आता है, मतलब कितना प्यारा है, ला बासा डोंट वरी, गम ना करो, तहूर उन पाक करेगी तुझे, क्या बीमारी ये पाक करेगी गुनाहों से, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, यानी फिक्र की बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो जल्द सेहतयाब हो गए। अब देखिए ये जवामिल कलेम है ना, किस से पाक करेगी, गुनाहों से पाक करेगी, बीमारी से भी पाक कर देगी, यानी एक ही दुआ के कई मुख्तलिफ मानी है। शिफा के लिए दुआ फरमाते, हजरत साद के लिए 3 बार दुआ की, मुशरिक चचाओं की बीमार पुरसी भी की, ये भी नोट कीजिए। तो कभी अब सवाल करते हैं ना कि हम हॉस्पिटल्स में जाएं तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं वहाँ उनकी करें, ज़रूर करें, वो भी इंसान है, आपका अच्छा सलूक उनको इंशाल्लाह इस्लाम के करीब लाएगा। एक यहूदी बच्चे की इयादत भी फरमाई जो ईमान ले आया, इस काम के लिए कोई दिन या वक्त मुकर्रर ना था, जब भी इत्तला मिलती और वक्त मिलता तो तशरीफ़ ले जाते। आपको पता है कि एक बच्चा था यहूदी, तो अल्लाह के नबी की खिदमत करता था, तो वो बीमार हो गया, तो अल्लाह के नबी सल्लम उसकी इयादत के लिए गए, तो उसका बाप भी था और वो बच्चा यहूदी था, और आप जानते हैं कि यहूद जो हैं वो इस्लाम नहीं कबूल करते, यहूद कहते हैं बस बाय बर्थ हम यहूदी हैं, वी कैंट रिवर्ट, इवन वो किसी को अपने अंदर लाते भी नहीं। तो नबी सल्लम ने उस बीमार बच्चे को जो डेथ बेड पे है, आपने क्या कहा कि बेटे बोल, कलमा पढ़, अल्लाह को गवाही दे, तो वो बच्चा अपने बाप की तरफ देख रहा है, तो बाप के भी दिल में अल्लाह ने सच डाल दिया उस वक्त, क्योंकि बच्चा दुनिया से जा रहा था, कहने लगा अबुल कासिम जो कहते हैं मान जाओ। तो उस बच्चे ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह को हुक्म देखिए कि कलमा पढ़ा और उसके बाद उसकी जान चली गई। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे का कफन दफन इस्लामी तरीके से किया, और रिवायात में आता है कि इसके बाद आप मदीना की गलियों से खुशी से गुजरते हुए कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सारी तारीफें उस ज़ात के लिए हैं जिसने बचा लिया उस बच्चे को आग में गिरने से, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ाना मिनन्नार। खुशी आपके चेहरे पे थी कि मरते वक्त भी उसको हक मिल गया तो उसने कबूल कर लिया। तो लिहाजा बीमारों की आदत करनी चाहिए। अब यहाँ एक एक बात के पीछे हजारों बातें हो सकती हैं, लेकिन हम अलग से जानते हैं बीमार की आदत की क्या दुआएं हैं और सुन्नतें हम सारी सीखते हैं, लेकिन आज इस वक्त इसको पढ़ते सुनते अपना अमल देखें। हम किस बीमार की आदत को जाते हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो हमारी बीमारी पे आए थे, या ना गए तो बेटी को बातें सुनेनी पड़ेंगी। आज हम रिश्तेदारियों और बिरादरियों के नाम पे ज्यादा बिजी रहते हैं, सुन्नत के नाम पे जाइए। ना गए तो वो बाजी कहेंगी मेरे मियाँ बीमार हैं या ही नहीं, चलो चले ही जाते हैं, कोई अजर नहीं है। अल्लाह देना चाहे तो दे दे, उसकी मर्जी है। 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआ करते रहते हैं जब तक आप बीमार के पास हैं। आप जन्नत के फल खाते हैं उस वक्त जब आप किसी बीमार के पास हैं। अल्लाह ताला आपको, मुझे सबको सेहत दे। जो बीमार होता है उसके लिए एक एक मिनट भारी होता है, वो दरवाजे की तरफ ही देखता रहता है कोई आए मुझे देखने। लेकिन आज क्या किया जाए, मसरूफियात इतनी बढ़ गई, सेहतमंद लोग बिजी इतने हैं कि वो बीमारों को नहीं देख सकते। कम अज़ कम हफ्ते में एक मरीज को ज़रूर देखें। मुझे वो वाक़या याद आ रहा है कि सुबह फजर की नमाज के बाद नबी सल्लम बैठते थे, इनफॉर्मल गुफ्तगू होती थी सहाबा से, बातें हुई, कुछ खा लिया पी लिया और कोई मशवरा करना है आज के दिन क्या करना है। साथ ही उसमें लोग अपने ख्वाब भी सुनाते थे। तो एक दिन फजर के बाद नबी सल्लम ने सहाबा को मुखातिब किया, ये बताएं कि आप में से कौन है, दो तीन काम पूछे, कोई ऐसा शख्स है कि जिसने आज सुबह से लेके अभी तक सदका किया। किसका हाथ उठा? उनका ही उठा जिनका हमेशा उठता था, अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठ गया। कच्चा तुम में से कोई ऐसा है कि जिसने मस्जिद में आकर सुन्नत पढ़ी, यानी मीन वक्त पे आ गया, हाथ अबू बकर का खुल गया। कच्चा कोई ऐसा है जिसने बीमार की आदत की, तो अबू बकर का हाथ खुल गया। कोई है जिसने किसी दूसरे की मदद की, अबू बकर का हाथ खुल गया। सारे परेशान हैं, बाद में लोग कहते हैं अबू बकर से अभी तो सुबह हुई है, ये आप सारे काम कैसे करके आ गए? कहा क्या किया, सुबह उठा तहज्जुद पढ़ी, मस्जिद के लिए निकला तो ख्याल आया कि फलां मेरा भाई या दोस्त जो भी है वो बीमार है, मैं उसकी आदत ना कर लूं। जब आदत करने गया मैंने कहा इसका घर ना साफ कर दूं, उसका घर भी साफ कर दिया। आ रहा था मस्जिद, रास्ते में फकीर मिला, मैंने सदका भी कर दिया। तो जिनको नेकी करनी होती है वो मौके का इंतजार नहीं करते। आजकल ये जुमला मेरे दिल दिमाग में रहता है, दिन रात साथियों की कोशिशें देखती हूँ। याद रखिए, जिसको नेकी करनी है वो किसी मौके का इंतजार नहीं करेगा, वो मौके खुद पैदा करेगा। और जिनको नहीं करनी ना, वो मौके को जाया करके भी बेफिक्र होते हैं, कहते हैं अभी कोई नहीं, बतेरा इन्होंने पढ़ाते ही रहना है, हम पढ़ते रहेंगे, जब दिल करेगा आ जाएंगे। बस बस दूर वाले आपसे फायदा उठा लेते हैं, करीब वाले आपकी कदर नहीं कर पाते। कदर से मुराद ये कि उससे फायदा नहीं ले पाते। तो जिंदगी में याद रखिए कि हर वक्त हर मौका मुयस्सर नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लम नेकियां करते थे, तो कम अज कम हफ्ते में एक मरीज को जरूर देखने जाए, और फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, और आपका फायदा है। आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं, फरिश्ता आपके लिए कर, सरासर आपका मेरा अपना फायदा होता है, लेकिन हम इसको जानते नहीं हैं। एक बार हजरत जाबिर बीमार पड़े, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रफीके खास अबू बकर को अपने साथ लिया और पैदल खासी दूर तक चलकर गए। मदीना की आबादी फैली हुई थी, हजरत जाबिर बेहोश पड़े थे, आपने देखा, फिर वजू किया, पानी के छींटे दिए, दुआ की और मरीज की हालत संभलने लगी। चुनाचे हजरत जाबिर ने बातचीत की और अपने तरके के मुतल्लिक मसाइल पूछे। सुभान अल्लाह, नोट कीजिएगा, याद रखिए कि जब बीमार के पास जाएं तो उसको फिर अच्छी अच्छी बातें भी बताएं। तो ये एक अमल है आपका। और एक आम सहाबी थे जाबिर, कोई बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल वाले भी नहीं थे, लेकिन अल्लाह के नबी का कितना एहतमाम था उनको जाने के लिए। तवाज़ो की इंतहा ये थी। अब ये थोड़ा सा देखते हैं कि अल्लाह के नबी के मिजाज में गुस्सा था, अकड़े रहते थे, लोगों से लड़ने भिड़ने को तैयार थे, या आजिज़ी थी, तवाज़ो थी। वजा कहते रखना, तवाज़ो मीन कि उनके शाने झुके हुए, राजीज और सॉफ्ट पर्सन जिसको आप कह सकते हैं। तवाज़ो की इंतहा यह थी कि मुनाफिकीन के लीडर अब्दुल्ला बिन उबई तक की इयादत फरमाई। कौन शख्स था आप सबको पता है, सारी जिंदगी अल्लाह के नबी को दुख देता रहा, हर साजिश में उसका हिस्सा था, हर जंग में उसका काम था। आपकी प्यारी बीवी पे तोहमत लगाने वालों में वो शख्स था, दिल में आपसे ग्रज रखता था, गुस्सा रखता था, लेकिन आप उसकी बीमारी पे भी उसको देखने गए। जब किसी शख्स की वफात हो जाती तो तशरीफ ले जाते, आलमे नजा में बुलाया जाता, या खुद इत्तला पाकर पहुंचते तो तौहीद और तवज्जो इल्लाह की तलकीन करते, क्योंकि उस वक्त बंदा सच जानता है। अगर डेथ बेड पे मौका मिले ना, हर शख्स इस्लाम कबूल करने को तैयार होगा। कुरान की आयत सूरत मायदा की आयत मेरा ख्याल है, जिसका खुलासा दो तरह से बनता है कि हर क्रिश्चियन ईमान लाएगा उसकी मौत से पहले, कबला मौत ही के लफ्ज है, मैं इस वक्त आपको उलझाना नहीं चाह रही, लेकिन सिर्फ इतना बता दूं कि उसकी दो तफसीरें हैं। बाज मुफस्सरीन कहते हैं कि हर ईसाई क्रिश्चियन अपनी मौत से पहले ईमान ले आता है, लेकिन फायदा कोई नहीं, और बाज कहते हैं कबला मौत ही, हजरत ईसा की मौत से पहले, और ये बात तो हदीसों से भी मिलती है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे, उस वक्त दुनिया में जितने यहूद होंगे उनसे वो लड़ाई करके उनको ख़त्म करेंगे, और जितने ईसाई क्रिश्चियंस होंगे वो हज़रत ईसा के साथ इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। सच का पर्दा खुल जाता है। देखिए आज पर्दे हैं मेरी आपकी आंखों में, पर्दे। क्या मैं और आप अच्छे मुसलमान नहीं बनना चाहते? हमें नहीं पता क्या ठीक है, क्यों नहीं कर पाते? दुनिया, मफाद, लोग, कारोबार, बच्चे, बच्चियाँ, ये आज मेरे आपकी आंखों पे पर्दे हैं जो हम इस्लाम का अमली नमूना नहीं बने हुए। डेथ बेड पे क्या होता है? अभी चंद दिन पहले वो क्लिप जो आपको बताया कि एक शख्स काफी देर से जो बीमार है उसके इससे बोला नहीं जा रहा, और लोग उससे पूछ रहे हैं कि सुनाओ अली क्या कहते हो, तो कहते हैं वो प्लीज रिपेंट टू अल्लाह, रिपेंट टू अल्लाह, अल्लाह से तौबा, अल्लाह की तरफ तौबा कर लो, तौबा करो। और वो शख्स था जो डैशिंग था, हजारों डॉलर्स की तो एक एक जूती थी उसकी, लेकिन अब वो कहता है दुनिया इज नथिंग। अब उसको मौका मिले तो वो यही कहेगा लोगों को कि लोगों इस दुनिया के धोखे से निकल कर आखिरत को देख लो। तो अल्लाह के नबी आखिरी वक्त तक मायूस नहीं होते थे। यहाँ से ये भी पता चलता है हिदायत को डिले नहीं करना चाहिए, किसको पता है कब क्या हो जाए। फिर इसी तरह से मैयत के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार फरमाते, सब्र की नसीहत करते, और चिल्लाने और बुका करने यानी रोने से रोकते। बुका कहते हैं ऊंची आवाज से रोना, रोना धोना जिसको आप कहते हैं। सफ़ेद कपड़ों में अच्छा कफन देने की ताकीद करते, और तजहीज़ो तकफ़ीन, तजहीज़ और तकफ़ीन क्या होती है? तजहीज़ सामान तैयार करना यानी मैयत के लिए जो नहलाने धुलाने की चीज़ें रखी जाती हैं, और तकफ़ीन कफन से यानी उसको आखिरी कपड़े पहनाना। इसमें जल्दी कराते, जनाजा उठता तो साथ साथ चलते, मुसलमानों के जनाजे खुद पढ़ाते, और मगफरत के लिए दुआ करते। कोई जनाजा गुजरता तो चाहे वो गैर मुस्लिम का हो खड़े हो जाते, बैठे रहने की रिवायत भी है। और बाज़ लोग कहते हैं कि क्याम का तरीका मनसूख हो गया था। फरमाते कि मैयत के घर वालों के लिए लोग खाना पकवा कर भिजवाएं, कुजा आज ये उल्टी रस्म चल पड़ी कि मैयत वाले घर में दूसरों की मेहमानी होती है। ना पसंद था कि बकायदा मजलसे ताज़ियत का सिलसिला एक रस्मी जाब्ते के तौर पर कई रोज जारी रहे। आज तो ना हमारा मरना नबी के तरीके पे, ना हमारा जीना नबी के तरीके का, ना शादियाँ, ना खुशियाँ, ना गम। एम आई राइट और रॉन्ग? यानी हमें तो मरना भी नहीं आता, हमें तो बीमारों को नहीं देखना था। मैं ये पढ़ रही हूँ तो मुझे शर्म आ रही है अपने ऊपर। क्या नबी, हम आपसे बड़े शर्मिंदा हैं। आज अगर मुसलमान इस तरह का हो जाए दुनिया में, दोबारा इंसानियत को इस्लाम मिल जाएगा। ये आज हमने अपनी बेअमलियों से लोगों को इस्लाम से दूर रखा हुआ है। कितनी बिदात शामिल हो गई है इस्लाम में। घर से पहले तीसरे दिन का खाना, फिर दसवें दिन का खाना, फिर जुमेरातों का खाना, फिर चालीसवें का खाना, ये कहाँ से आए? ये तीजा क्या है? आप कहते हैं कुल की, जिसको आप कुल कहते हैं, ये क्या है? ये एक और मजहब वालों का तीजा है। तीजे को हमने कुल कह दिया, और इसी तरह से जो उनके मिथ थे, उनके ख्यालात थे, उससे हमने चालीसवां भी बनाया। अल्लाह के नबी ने कभी कुछ नहीं कहा। इवन आप पढ़ रहे हैं कि बकायदा मजलिस मुनक्कद करना कि आज फुला मर गया, भूड़ी डालना जिसको कहते हैं, और बैठना बात करना। साहबा कहते हैं कि हम तीन दिन के बाद मैयत वाले घर में जाना, इसको नौखा कहते थे, और नौखा आपको पता है हराम है इस्लाम में। रोना पीटना, मैयत के घर वालों से खाना खाना इंतहाई नापसंदीदा और बड़ी बेगैरती की बात है कि एक बेचारे रो धो रहे हैं। आज हमारा कोई तरीका नबी से नहीं मिलता। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे। कोई मुसाफिर सफर से वापस आता और हाजिरी देता तो इससे मुआनिका करते। मुआनिका आप समझ चुके हैं, उनुक, गर्दन से गर्दन मिलाना। बाज़ुकात पेशानी चूम लेते, किसी को सफर के लिए रुख्सत फरमाते तो कहते भाई हमें अपनी दुआओं में याद रखना। कितनी आजजी है, नबी को क्या जरूरत है दुआओं की? हाँ तुम गुनाहगार लोग, तुम्हारी दुआएं मुझे क्या लगनी है? नहीं भाई, दुआ करना, क्योंकि सफर में दुआएं कबूल होती हैं। मोहब्बत तामेज बेतकल्फी में कभी कभी अहबाब के नामों को मुख्तसर करके भी पुकार लेते, जैसे या अबा हुरैरा की जगह या अबा हिर, और हजरत आयशा को कभी कभी आप आयश कहते थे, यानी आयशा को छोटा करते, प्यार से नाम बदलते थे। इससे आपको देखिए कि अल्लाह के नबी एक बहुत सेंटिमेंटल इंसान थे, बेहिस तो नहीं थे। आज हमारे जहन में दीनदार के नाम के साथ आता है, ना हंसते, ना बोलते, ना लेते, ना देते, ना बस क्योंकि दीनदार है, बहुत नेक है। नहीं, आप एक लाइवली पर्सनैलिटी थी, आप लोगों को मोहब्बत का एहसास दिलाते थे। बच्चों से क्या ताल्लुक था ये जरा इसको भी देख लेते हैं। बच्चों से बहुत दिलचस्पी थी, बच्चों के सर पर हाथ फेरते, प्यार करते, दुआ फरमाते। नन्हे बच्चे लाए जाते तो इनको गोद में ले लेते, इनको बहलाने के लिए अजीब से कलमे फरमाते, यानी क्या फरमाया करते थे, हर रिखू फी आइनिन कुल्ली बका, यानी इसका मतलब क्या है कि मतलब बच्चों को अल्लाह ताला बुरी नज़रों से बचा कर रखे। बाज़ लोगों ने ये मानी निकालने की कोशिश की है कि हर मच्छर की आंख में टिड्डी का जबड़ा है, यानी ऐसे कलमात है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अब आप कहें कि इसका मतलब क्या है, तो जब आप बच्चों से बातें करते हैं तो उसका अक्सर मतलब कोई नहीं होता। आप टीटी टीटू करते रहते हैं, चू 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 चू, कू 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 कू, हाँ अब उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। यानी बच्चों को बहलाते थे अजीब से कलमे, ऐसे ही जरा थोड़ा सा एक मिलोडियस सी बात। एक मासूम बच्चे को बोसा देते हुए फरमाया, इन्नहुम लिमन रेहानुल्लाह, ये बच्चे तो खुदा के बाग के फूल हैं। रेहान खुशबू को कहते हैं, खुशबू वाला फूल, यानी बच्चे तो फूल हैं। बच्चों के नाम तजवीज़ करते, बच्चों को कितार में जमा करके इनामी दौड़ लगवाते कि देखे कौन हमें पहले छू लेता है, यानी कॉम्पिटिशन्स करवाते थे। बच्चे दौड़ते हुए आते तो कोई सीने पे गिरता, कोई पेट पे, बच्चों से दिल लगी भी करते थे। मसलन हजरत अनस को कभी कभी प्यार से कहते, कितने साल के आए थे हजरत अनस इनके पास? 10 साल के। तो क्या कहा करते, या जल उजुनैन, वो दो कानों वाले। तो सब कौन है? दो कानों वाले ही हैं। हजरत अनस के भाई अबू उमैर का पाला हुआ ममूला, यानी चिड़िया का बच्चा, एक चिड़िया थी वो मर गई तो वो उदास बैठा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो पुकार कर फरमा, या अबा उमैर मा फाल अल नगीर, ए अबू उमैर तुम्हारी चिड़िया का क्या हो गया, तुम्हारा वो परिंदा किधर चला गया, यानी फौत हो गया था वो चिड़िया का बच्चा। अब्दुल्ला बिन बशीर के हाथ इनकी वालदा ने हदीये के तौर पर अंगूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजे। साहबजादे मियाँ रास्ते में खा गए। आप भी अपने बच्चों के हाथ कुछ किसी को भेजें तो ये हो सकता है। बाद में मामला खुला तो प्यार से अब्दुल्ला के कान पकड़ कर कहते, या गदर, ए धोखेबाज, ए धोखेबाज, यानी कि मेरा खाना तू खा गया। सफर से आ रहे होते तो जो बच्चा रास्ते में मिलता इसे सवारी पर बिठा लेते। छोटा होता तो आगे, बड़ा होता तो पीछे। फसल का मेवा यानी मौसम का फल पहली बार आता तो दुआए बरकत मांगकर कम उम्र बच्चे को दे देते। आपके पेशे नजर ये था कि यही नई पौध आइंदा तहरीक इस्लामी की अलमबरदार होगी। क्या इस सारे पैराग्राफ की रोशनी में हम अपना बच्चों से ताल्लुक देखें? आज तो हम अपने बच्चों से जान छुड़ाते हैं, यकीन करें। आज बच्चों के साथ हमारा वो ताल्लुक नहीं जो होना चाहिए। बहलाते हैं, फोन पकड़ा दिया मेरी जान छोड़ो, टीवी के आगे बिठा दिया मुझे बितंग ना करो, तुम फोन से खेलो मैं अपनी दोस्त से बातें करूं। क्या हम अपने बच्चों के बारे में संजीदा नहीं है? यकीन करें मैं आपको सच कहती हूं, हमारा सोने का सेट हमारी नजर में ज्यादा कीमती है, जिसको हमने लॉकर में रखा हुआ है या घर में कहीं छुपा के रखा हुआ है। लेकिन ये मासूम फूल, इसको हम बेरहम हाथों में छोड़ाते हैं। वहां वो म्यूजिक सुनते, वो जीजस के सॉन्ग्स गाते, वहां वो पिग अगर नहीं आप खिलाते तो ठीक है, लेकिन वो देखते तो है ना, नफरत तो खत्म हो गई ना। क्या कुछ खुराफात हैं ये, मेरे आपके कहने की जरूरत नहीं है। तो अपने इन मासूम फूलों की हिफाजत करें, ये कल आपका मुस्तकबिल है। मैं दिन रात इस बारे में सोचती रहती हूँ कि जिनके बच्चे हैं और वो ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां वो खिलाफ अकल बातें, मुझे एक माँ ने कहा कि वहां बच्चे पढ़ने आगे से वो सब कुछ सीख के आ रहे हैं जो बड़े करते हैं। अब इसमें इशारा आप खुद समझें, टीचर्स के कपड़े बच्चे कॉपी करते हैं। मुझे एक माँ ने कहा, मेरी मासूम बच्ची है इतनी जहीन, सब समझदार, मैंने खुद देखा है, हर दुआ याद कर लेती, हर चीज को है, लेकिन चंद महीने के बाद वो कहती है कि उल्टी सीधी हरकतें करती, खड़े खड़े कपड़े उतार देती है, अपने बट्स दिखाती है, चल चल के दिखाती है। क्यों? वहां सीख के आ रही है। तो ये कार्टून भी यही सिखा रहे हैं, तो हकीकी कार्टून भी यही सिखा रहे हैं। तो अपने बच्चों की हिफाजत करें, ये आपका सरमाया है। आज जो बुनियाद पड़ गई ये बाद में फिर इंशाल्लाह चलेगी, और वरना फिर बड़े बच्चों का हम रोते हैं कि वो शुरू से हमने उनकी तरबियत नहीं की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को बहुत अहमियत देते थे। और दूसरा ये देखें कि इसमें आप लोग देखें कि बच्चों में इंटरेस्ट लें। आप दूसरों के बच्चों से करते थे तो अपने बच्चों के साथ कितना नहीं करते होंगे, और अपने बच्चे का तो सब करते हैं इस वक्त यहाँ ये सुनते हुए। करें दूसरों के बच्चों से भी प्यार करें, उनको भी उठाएं, उनसे बातें करें। ये सब बच्चे हमारे बच्चे हैं। इवन बच्चा मुस्लिम नॉन मुस्लिम सबका एक होता है, एक ही जैसे होते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि हम जो अल्लाह ने एक दुनिया में इंसान भेजा है उसकी हिदायत के जरिया बन जाए। तो अल्लाह ताला हमारे लिए ये सारी चीज़ों को आसान करे। बूढ़ों के साथ आपका क्या ताल्लुक था? बूढ़ों का एहतराम फरमाते। फतेह मक्का के मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने ज़ईफुल उमर यानी बूढ़े वालिद को, जो बिनाई से भी महरूम हो चुके थे, बैत इस्लाम के लिए आपकी खिदमत में लाए। फरमाया, इन्हें क्यों तकलीफ दी, मैं खुद इनके पास चला आता। यानी एक नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल करने के लिए आपके पास लाया जा रहा है, और आप क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप क्यों लेके आए, मैं खुद आ जाता और मुझे इनको यहाँ देखना अच्छा नहीं लग रहा। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपके अंदर आजजी है ना, तो आप हर इंसान की कदर करेंगे, चाहे वो आपसे उम्र में बड़ा हो या छोटा हो। सारे पैराग्राफ पे एक जुमला दे देती हूँ कि नबी सल्लम इंसान दोस्त थे, मुसलमान दोस्त नहीं थे, इस्लाम दोस्त थे, इंसान दोस्त थे, ह्यूमैनिटी से आपको प्यार था, क्योंकि हर इंसान अल्लाह का एक क्रिएशन प्लान है, हर इंसान एक ही तरीके से मां के पेट से निकल कर आता है। तो क्यों कुछ इंसानों को हम इग्नोर करके कह दें कि जी ये वो नहीं तो ये नहीं है। तो लिहाजा इंसानों में दिलचस्पी लें, मशीनों को छोड़ें। ये जितने आपके मेरे हाथों में गैजेट आ गए, हम साथ बैठे से बेजार होते हैं, हम चार चार घंटे की फ्लाइट एक साथ करते हैं, और हम नेबर से नहीं पूछते कि कौन हो किधर से आए हो, उनके भी कानों में वॉकमैन लगे हुए हैं और आपके भी हाथों में कुछ खेल खिलौने होते हैं। अमल की बात नोट कीजिए कि नबी सल्लम की सुन्नत ही लोगों में दिलचस्पी लेना, और ये आपके अंदर आ गई ना, तो वैसे ही आप लोगों के भी पसंदीदा बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुरव्वत की इंतहा ये थी कि मदीना की एक औरत जिसकी अकल में कुछ फतूर था आती है और कहती है मुझे कुछ कहना है। आप इसे फरमाते कि तुम चलो किसी कूचे में इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। चुनाचे इसकी बात जाकर सुनी और इसका काम करके दिया। ऐसा ही एक वाकया अदी बिन हातिम ने देखा था और नबी सल्लम की मरव्वत को नबूवत की अलामत के तौर पर लिया। दीवानी औरत की बात सुनने को तैयार है, कितनी बड़ी बात है। मेलजोल की जिंदगी में आपके हुस्ने किरदार की तस्वीर हजरत अनस ने खूब खींची है। वो फरमाते हैं, मैं 10 बरस तक आपकी खिदमत में रहा और आपने मुझे कभी उफ तक ना कही। कोई काम जैसा भी किया, नहीं कहा कि ये क्यों किया, और कोई काम ना किया तो नहीं कहा कि क्यों नहीं किया। यही मामला आपका खादिमों और कनीजों के साथ रहा, आपने इनमें से किसी को कभी नहीं मारा। इसकी तस्दीक हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अजवाज या खादिमों में से ना कभी किसी को मारा, ना किसी से कोई जाती इंतकाम लिया, सिवाय इसके कि आप अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें या कानून इलाही के तहत इसकी मुकर्रर करदा हुरमतों के तहफ्फुज के लिए कार्रवाई करें। यानी आपने अगर तलवार उठाई, तीर उठाया, जंग में गए तो सिर्फ अल्लाह के कलमे के लिए, और वो भी देखा जाए तो इंसानियत पर रहम था ना, क्योंकि आप लोगों को बताते थे कि अल्लाह को मान जाओ, अल्लाह को एक मान जाओ और बुरे अंजाम से बचोगे। तो नबी सल्लम ने अपनी जाती जिंदगी में कभी किसी से कोई बदला नहीं लिया, और आप एक हाश या एक सख्त गिर इंसान नहीं थे, आप बड़े सॉफ्ट इंसान थे। क्या ये सारी किरदार देखकर नबी सल्लम से मोहब्बत बढ़ रही है? दिल से निकल रहा ना कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इस वक्त साथ ये दुआ करें कि अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे।